जन्म हुआ, पिता की मृत्यु हो गई, एक विधवा माँ समाज में कैसे अपने बेटे का पालन करे, तो संतों के आश्रम में जाकर के मेरी मैया रहने लगी। वहाँ गाय की सेवा करती है, गाय का दूध निकालती है और संतों की सेवा करती है। जो संतों का प्रसाद बचता है वो माँ खाती और मुझे भी खिलाती है। अच्छा, जब चतुर्मास आया, बाहर से भी संतों की मंडली आई, आश्रम में खूब सत्संग चला चार महीने, तो महाराज इतना आनंद आया, हम भी सत्संग सुने, माँ भी सत्संग सुने और जब चतुर्मास खत्म हुआ, अब तो सत्संग सुनते सुनते हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई, मेरे मन को बैराग आ गया, मेरे मन को बैराग चढ़ा। संत लोगों ने कहा कि अब तो सत्संग हो चुका है, चतुर्मास बीत गए, अब हम जा रहे हैं श्री धाम वृंदावन, कोई कहता हम जा रहे हैं अयोध्या। अब संतों का जब भ्रमण वहां से शुरू होने लगा, तो बेटा चरणों में जाके गिर पड़ा और संतों से कहता है, महाराज यदि मुझे छोड़ के गए तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब सत्संग मेरा भोजन है, हमें साथ लेके चलो। भैया जिस माँ को अकलो तो बेटा हो, पति भी है नहीं है, बेटा अकेला, अब वो मैया कैसे चाहेगी कि मेरा बेटा साधु बन जाए। मैया संतों के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज अगर मेरे बेटा को ले गए तो मेरे बुढ़ापे की लाठी कोई ना, जे मेरे बुढ़ापे की लाठी है, महाराज इसे लेके मत जाना, इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। कहते हैं और मेरा नाम रखा संतों ने रामदास। हम तो थोड़ा भी इधर उधर जाए कि मैया चिल्लाने लगे, बेटा रामदास कहाँ हो, बेटा रामदास कहाँ हो। एक पल भी मेरी मैया आंखों से ओझल नहीं होने देती थी, क्या कर। संतों ने कहा, पुत्र मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माँ और पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। आप तो एक काम करिए, जब आपकी मैया पधार जाए ना संसार से, फिर तुम हमारे पास में आ जाना, खूब भजन करना, अभी अपनी माँ की सेवा करो। संत चले गए, मैं माँ की सेवा कर रहा, लेकिन जिस समय मैं साधना में बैठता था, माला जाप करता था, व्यास जी से कह रहे हैं, बोले महाराज ऐसा सोचना नहीं चाहिए, एक दिन तो हम माला जाप कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और माला जाप करते करते मेरे मन में धारणा आ गई, क्या भगवान जी मेरी मैया जल्दी पधार जाए, हाँ मेरी मैया जल्दी पधार जाए तो कम से कम भगवान के भजन को मौका मिल जाए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन सोच लिया, भक्ति में बैराग आए। एक दिन की बात है, माता गाय दूहने के लिए गई, काले सर्प ने माँ को डस लिया, माँ की मृत्यु हो गई। तो बेटा रामदास कह रहा है, मैं बहुत रोया, महाराज एक आंख से गर्म आंसू और एक थे ठंडे आंसू। अच्छा, क्या आंसू दो प्रकार के होते हैं? बोले हाँ, जब बेटा मंडल टॉप आता है, बेटा अपना सर्टिफिकेट लेकर के आता है, बोले बोले पिताजी माताजी, बोले आज मैंने मंडल टॉप किया है, मेरी शिक्षा इतनी अच्छी है, मैंने बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किया है, मेरे स्कूल में मेरा, स्कूल छोड़ो पूरे मंडल में मेरा टॉप नंबर आया। तो माता पिता खुशी हो जाते हैं, कभी कभी खुशी में आंसू निकल जाते हैं, देखा है, ज्यादा अंदर से जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो आंसू निकल जाते हैं, वो आंसू ठंडे होते हैं। और जब किसी की मृत्यु होती है ना, कोई जवान बेटा किसी का जाए, फिर वो माँ जब रोती है ना, तो उसकी आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं। कभी भी देखना, दुख में निकलने वाले आंसू गर्म होते हैं और खुशी के आंसू ठंडे होते हैं। बोले महाराज मैं बहुत रोया, एक तो दुख है और एक तरफ मुझे प्रसन्नता भी है, क्या दुख तो ये है कि माँ माँ होती है, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है और एक तरफ मुझे प्रसन्नता हुई, अच्छा हुआ माता जी चली गई, खूब भजन करेंगे। महाराज मेरी मैया पधार गई और मैया के पधारने के बाद में मैंने अपनी माला हाथ में ली, सीधा जंगल में पहुंचा और उसके बाद में एक बहुत बड़ी गुफा जो थी उसके अंदर में गया, मजीरा हाथ में लिए और मैंने भजन शुरू किया भगवान का। भजन करते 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 करते, ध्यान करते करते, चिंतन करते करते, एक बार तो ऐसा हुआ महाराज कि एक झलक भगवान की नजर आई, भगवान की मोहिनी मूर्त नजर आई और जैसे भगवान की झलक नजर आई तो मैं खुश हो गया, पर भगवान की तुरंत ही झांकी ओझल हो गई, मैं तो रोने लगा, बोलिए प्रभु कहाँ हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकते प्रभु, अरे मुझे छोड़ के मत जाओ। भगवान बोले बेटा मिलूंगा लेकिन अभी समय बाकी है। भजन करते करते एक बार ऐसी प्रलय आई, सारे संसार का प्रलय हो गया और उसी में हमारा भी प्रलय हो गया। मैं पुणे आकर के वही दासी का पुत्र रामदास, मैं ब्रह्मा का बेटा बना हूं, वीणा मेरे हाथ में है और 24 घंटे नारायण 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 हरि नारायण हरि भगवान का भजन कर रहे थे। अरे व्यास जी महाराज जब संत की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से जब जीवन बदल सकता है तो तुम भागवत क्यों नहीं लिख सकते हो। तीन उंगलियां हृदय से लगाई देव ऋषि नारद ने व्यास जी के और सारी भागवत का ज्ञान उड़ेल दिया। बोले ये चार मंत्र की भागवत हम आपको प्रदान कर रहे हैं, अब आप जो है इसी भागवत को एक दो नहीं 18,000 श्लोकों में विस्तृत करो, उसी भागवत को श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया। गणेश जी को लेखनी पर बैठा ला, व्यास जी बोलते जा रहे धारा प्रवाह समाधि में हो जाते, बोलते जा रहे गणेश जी लिखते जा रहे हैं 18,000 मंत्रों में लिख के रख दिया। बोल गोविंद भगवान की। अब मन में ये विचार आया, अच्छा इतनी बड़ी भागवत इसे सुनने का अधिकारी कौन है? मेरे भगवत प्रेमी ध्यान रखना, बोले इसे सुनने का अधिकारी कौन है, किसको सुनाई जाए ये भागवत? तो व्यास जी समाधि में गए, अंदर से आवाज आई है, बोले इस कथा को सुनने का अधिकारी वही है जिसने काम और क्रोध जीता है। ये कथा भृगु ऋषि को सुनाई जाए, बोले भृगु जी ने क्रोध नहीं जीता है, भगवान के बक्ष स्थल पर पादप प्रहार कर दिया, बोले उन्होंने क्रोध नहीं जीता। तो बोले वो सुनने के अधिकारी नहीं है। कितनी बड़ी भागवत देखो समझो। बोले विश्वामित्र को सुनाई जाए, बोले नहीं। क्यों? बोले उन्होंने काम नहीं जीता है, सारे जीवन साधना की और अंत में एक अप्सरा आई है और मेनका नाम की अप्सरा ने 2 मिनट में किए धरे पे पानी फेर दिया। इसीलिए कहते हैं सावधान साधना में सावधान, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को उस मार्ग बढ़ाते चलो। ठीक नहीं है तो गंगा रोज गोता लगा, गंगा मैया तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती। यदि केवल गंगा नहाने से कल्याण होता है जीव का तो गंगा के किनारे जाने कितने गांव बसे हैं, जाने कितने भक्त वहां बैठे हैं। हमें तो लगता कि रोज गंगा मैया का दर्शन करते रोज नहाते तो सबसे पहले वैकुंठ तो उनको ही मिलना चाहिए जी, है ना? उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो रोज गंगा का दर्शन करते रोज गंगा नहाते। नहीं नहीं नहीं, गीता में मेरे गोविंद ने लिखा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं, ना भुक्तम चियते जन्म कोट सतय रपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। और पहले ही श्लोक में गीता में पहले ही पेज पे लिख दिया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सभा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत सत्स। ये कर्म भूमि है, यहाँ जैसा करोगे वैसा भरोगे वैसा मिलेगा। कर्म प्रधान है। अरे गंगा मैया तो पवित्र है, पर जीव के अंदर कितना विकार भरा है ये पता है? हमें तो लगता है सर से लेकर पैरों तक अवगुण अवगुण ही भरे महाराज। वो हम गंगा से शरीर धुल सकते हैं, शरीर धुल सकते हैं गंगा से, ना कि कर्म बदल सकते हैं। और जब तक कर्म नहीं बदलेगा ना, तब तक गंगा नहाने से कोई फायदा? बोले पाप की गठरिया इकट्ठी कर लो और जिस दिन समय मिले उसी दिन गंगा मैया में पट गया। हाँ जी, क्यों? बोले गंगा मैया को दिया, राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। प्यारे बलिवल, गंगा शरीर धुल सकती है, और जब तक तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ नहीं बनेगा, आप गंगा नहा के आए और घर आने के बाद आपने बुरा काम शुरू कर दिया, गंगा मैया क्या करेगी? फिर अपराध हो गए, फिर चले गए, फिर अपराध हो गए, फिर चले गए। हाँ, कभी नहीं हो सकता कल्याण। उस गंगा को नहाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है? नंबर एक, शरीर में बल। नंबर दो, जेब में धन। और नंबर तीन, तैरना भी आना चाहिए। शरीर में बल भी है, धन भी है, दोनों चीजें हैं। अगर तैरना नहीं आ रहा है तो अंदर ज्यादा चले गए ना नहाने। बोले खूब गहरे गोता लगाएंगे, सो खूब अब की बार गंगा भैया कृपा करेंगे, अब की बार अच्छा जन्म मिले, बढ़िया पुण्य में करेंगे, खूब गहरे जो डालेंगे। अब तैरना आता नहीं हो चले गए बीच धार, तो आई लहर गंगा भैया की, गोविंदा ये नमो नमः बोल गोविंद भगवान की। प्यारे सज्जन, इसलिए उस गंगा में यदि डूब गए ना, एक वो गंगा है और एक ये गंगा है जिसमें आप लोग गोता लगा रहे हैं, ध्यान रखना अंतर कितना है। उस गंगा में यदि डूब गए तो मर जाओगे, उस गंगा में डूब गए तो मर जाओगे, और इस सत्संग रूपी गंगा में यदि डूब गए तो तर जाओगे। बोल गोविंद भगवान की, तर जाओगे। ये बड़ा गहन विषय, भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये बहुत गहन विषय है। यदि इसको भाव से सुना जाए और कहा जाए तो सच में इस कलिकाल में भागवत जी से कल्याण होता है। हाँ हाँ, ये कथा एक जगह नहीं हुई है। सूत सोनकादि ऋषियों का संबंध चला, संवाद। अच्छा, सबसे पहले ये भागवत जो है किसने किसको सुनाई? सबसे पहले हमारे भगवान नारायण ने, नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई केवल चार श्लोक में। ध्यान देंगे, चतुश्लोकी भागवत जिसको बोलते हैं, चार मंत्र में ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को सुनाई और देवऋषि नारद ने एक दिन दृश्य देखा। क्या? श्री व्यास जी महाराज जो है सरस्वती नदी के किनारे बद्र का आश्रम के पास में बैठे हैं, और व्यास जी को बड़ी चिंता है, चेहरा मलिन है। पाराशर जी के पुत्र व्यास नंदन नारद जी पहुंच के बीड़ा बजाते हुए, नारायण हरि हरि हरि, अरे पाराशर नंदन आपके चेहरे पर मलिनता क्यों है? आपका चेहरा नीरस क्यों, उदास क्यों है? आपकी उदासी दुनिया को उदास कर देगी, अब तो परम भक्त हैं, क्या बात है? व्यास जी कहने लगे, कुछ मत पूछो, क्यों? मैंने 17 पुराण लिख दिए हैं, अभी भी हमको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ लिखा नहीं, जैसे कोई विद्वान कोई रचना करे और उसकी रचना यदि समाज के लोग पास ना करें कि कोई कभी कविता लिखे और वो समाज में गाए और उस कविता की विद्वान लोग सराहना ना करें, उसकी बड़ाई ना करें। अरे वाह, बड़ी सुंदर कविता कही। यदि बड़ाई ना करे तो उस व्यक्ति का मन गिर जाएगा, उस कवि का मन नीरस हो जाएगा। क्यों? उसको लगेगा कि अभी मेरी कविता में कोई कमी रह गई है। प्यारे व्यास जी कहने लगे, महाराज मैंने 17 पुराण लिखे, महाभारत जैसा ग्रंथ मैंने बहुत कुछ लिख दिया, पर मेरे मन में उदासी है। हमको ऐसा लग रहा है कि अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है अभी कुछ बाकी है। बंधुओं, देव ऋषि नारद कहने लगे, भगवान हाँ आप तो एक काम करिए, क्या आप श्रीमद् भागवत जी की रचना करिए। श्रीमद् भागवत? अरे महाराज, शरीर में बुढ़ापा है, भागवत की रचना कैसे हो? ध्यान देना, ये भागवत कितनी बड़ी चीज है। कैसे भागवत की रचना हो? बोले तो नारद जी बोले, अरे महाराज कौन सी बड़ी बात है, अरे संत की कृपा से जीवन बदल सकता तो तुम भागवत क्यों नहीं लिख सकते हो? अपनी पूर्व कहानी सुनाई नारद जी ने, और नारद जी बोले हैं व्यास जी से, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था महाराज, ध्यान देना, दासी का पुत्र था और मेरे पिता बचपन में गुजर गए, मेरा